ابتدا میں لوگ ایک رات دینے کو تیار نہیں تھے, لیکن جب اللہ کے کچھ بندوں نے قربانیاں دی, محنت کی, رو رو کر اللہ سے مانگا, اللہ نے رفتہ رفتہ ساری دنیا میں کام کو پہنچا دیا, اور دنیا کا کوئی خطہ کوئی علاقہ باقی ایسا نہیں رہا جہاں اللہ کی بات نہ پہنچ گئی ہو اور اللہ کے بندے اللہ کے کام میں نہ لگے ہوں. لیکن ابھی جتنا کام ہوا ہے وہ بہت تھوڑا ہے, کام ابھی بہت باقی ہے, جس کے لیے مزید قربانیاں بڑھانے کی اور لوگوں کو متوجہ کرنے کی اور مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. پورا عالم محنت کا میدان اس امت کو دیا گیا ہے, عالمی نبی کی امت میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عالم کے کونے کونے تک پہنچانا یہ امت کے کانوں پر ذمہ داری رکھی گئی ہے, اور ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اس کے لیے یہاں میرے محترم بزرگ بھائی ہم جمع ہوئے ہیں. عرض یہ کرنا ہے کہ حق تعالی شانوں نے ایک عالم تو آسمانوں سے اوپر بنایا ہے اور ایک عالم آسمانوں سے نیچے بنا ہے جسے دنیا کہتے ہیں, اور آسمانوں سے اوپر جو عالم بنایا ہے اسے آخرت کہتے ہیں. جیسے اس وقت میں دن کا وقت ہونا, دوپہر کا وقت ہونا, امراوتی کے اجتماع کے میدان میں ہونا, جیسے یہ بات یقینی ہے, اس سے زیادہ یقینی آخرت والی زندگی ہے جو اللہ نے بنائی ہے. یہ دو زندگیاں ہیں جس کے درمیان انسان کو رکھا گیا ہے, دنیا کی زندگی جس میں ہم چل رہے ہیں, یہ زندگی امتحان والی زندگی ہے, یہ زندگی عمل والی زندگی ہے, یہ زندگی کچھ کرنے والی زندگی ہے, اور آخرت والی زندگی وہ بدلے کے لیے رکھی گئی ہے. یہ زندگی فنا ہونے والی, یہاں کی ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جانے والی, کل من علیہا فان, نہ ملک بچیں گے نہ ملک والے بچیں گے, نہ حاکم بچیں گے نہ محکوم بچیں گے, نہ مالدار بچیں گے نہ غریب بچیں گے, زمین پر بچنے والی کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی, سب کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, اور دنیا کی ہر چیز ختم ہونے کے لیے بنی ہے, تو یہ دنیا کی حقیقت دل میں بٹھانا ضروری ہے. یہاں کی ہر چیز مٹی سے پیدا ہوئی ہے اور انجام اس کا مٹی میں مل جانے ہیں. اچھی سے اچھی گاڑیاں جو سڑکوں پر دوڑتی ہیں اور آدمی ان میں بیٹھ کر فخر کرتا ہے, کچھ زمانے کے بعد وہ کوڑے کے ڈھیر پر کباڑ کے اندر پڑی ہوئی نظر آتی ہیں اور پڑے پڑے مٹی ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے قلعے لوگوں نے بنائے, بادشاہوں نے بنائے, آج وہ بادشاہ بھی مٹی کے نظر ہو گئے اور ان کے بنائے ہوئے قلعے بھی مٹی کا ڈھیر ہو گئے. تو اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے, فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے, انسان بھی اس دنیا میں فنا ہونے والا ہے, کوئی باقی رہنے والا نہیں. کیسے بادشاہ فرعون جیسا ملعون جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا تھا وہ بھی نہیں بچ سکا, ایک جھٹکے میں سمندر کی تہ میں چلا گیا اور ڈوب کر اس کو مر گیا. تو یہاں کوئی بچنے والا نہیں ہے. تو اس دنیا کا حال فنا ہے, اس دنیا کا انجام فنا ہے, یہاں کی ہر چیز کا انجام فنا ہے, لیکن اس کی اہمیت, اس فنا ہونے والی زندگی کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اس پر باقی رہنے والی زندگی کا مدار اسی دنیا کی زندگی پر ہے. یہ اگر ہاتھ سے نکل گئی تو آخرت کے بننے کی کوئی جگہ اور نہیں ہے. اس لیے یہ زندگی ایک اعتبار سے بہت فانی اور بے حیثیت ہے, لیکن ایک اعتبار سے بڑی قیمتی اور با حیثیت ہے کہ یہیں بیٹھ کر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنا ہے, یہیں رہ کر آخرت کے لیے فکریں بنانا ہے. ان فنا ہونے والی چیزوں میں رہ کر ہی باقی رہنے والی چیزوں کو بنایا جائے گا. इन फना रहे होने वाली चीजों के जरिए से ही इसको सही इस्तेमाल करके हमेशा हमेशा की बाकी रहने वाली जिंदगी को बनाया जाए। तिजारत फना होने वाली है, लेकिन उसके अंदर जो आमाल किए जाएं, जो अहकाम पूरे किए जाएं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिस तिजारत को किया जाए, सदाकत भी हो, अमानत भी हो, ईमानदारी भी हो, फरमाया कि आखिरत के एतबार से ये ताजिर बड़े बड़े लोगों के साथ इसका हशर होगा, शहादा के साथ, अंबिया के साथ। कितनी बड़ी बात है, तिजारत फना होने वाली है, लेकिन उसमें जो अमल है वो हमारे आखिरत को बनाने वाले हैं। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हम माश के जिस भी मशगले में लगे हुए हैं, तिजारत हो, ज़राअत हो, कारखाने हो, फैक्ट्रियां हो या और कोई मशगला हो, उन मशगलों से अपने पलने का यकीन न रखा जाए, न वो मशगले हमें पाल सकते हैं, न हमारे अहलो अयाल को पालने की उनमें गुंजाइश है। वो सब मखलूक हैं, पालनहार एक ही है, वो सब मखलूक हैं, सब मखलूक और इम्तिहान के लिए दिए गए हैं। मोटी सी बात है, एक कारखानदार से पूछा जाए कि आपका कारखाना आप चलाते हैं या कोई और चलाता, तो कारखानदार का जवाब यही होगा, फैक्ट्री वालों का जवाब यही होगा, फैक्ट्री हम चलाते हैं। एक दुकानदार से पूछा जाए कि दुकान आप चलाते हैं कोई और चलाता है, कि जी मैं ही चलाता हूं, तो जो दुकान चलने में हमारी मोहताज है, अगर हम न चलाएं, हम न बैठें, दुकान की देखभाल न करें, वो दुकान नहीं चल सकती, वो कारखाना नहीं चल सकता, खेती की जमीन नहीं कुछ कर सकती, काश्तकार ही करता है मेहनत। तो जब कारखाना, दुकान, जमीन चलने में हमारी मोहताज है, तो हमारी परवरिश कैसे उसके जरिए हो सकती है? ये दोगे की बात है, जो हमारे चलने में हमारी मोहताज, जो हमारी पालनहार और हमारी परवरिश का सामान या हमारे अहलोयाल की परवरिश का सामान कैसे कर दे। तो इन आमाल में हजरत फरमाते थे कि कारोबार में, तिजारत में, माश में अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हुए जब चलेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को इख्तियार करते हुए जब ये अमल करेंगे, तो ये फना होने वाले कारोबार, खत्म होने वाले कारोबार इन आमाल की बरकत से हमारी और हमारे बाल बच्चों की परवरिश का जरिया भी बनेंगे, और अल्लाह ताला इन फना होने वाले कारोबार में अमल अच्छे होने की वजह से हमारी आखिरत भी बनाएंगे, और इस ताजिर का हशर नबियों और सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। एक बादशाह है, एक हाकिम है, फरमाया कि अगर इंसाफ के साथ हुकूमत की जाएगी, बादशाहत की जाएगी, इंसाफ कायम किया जाएगा, तो ये बादशाह कयामत के दिन जिन लोगों को अर्श के साए में जगह मिलने की खुशखबरी सुनाई गई है, उनमें सरे फहरिस्त आदिल बादशाह को शुमार किया है बादशाह, लेकिन बादशाहत में अमल वो किया जो अल्लाह को पसंद है, हुक्म पूरा किया, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका उसको इख्तियार किया, तो बादशाहत भी की और आखिरत में अर्श का साया भी मिल गया। तो फना होने वाली बादशाहत से बाकी रहने वाली आखिरत बन गई। बस इसी तरह दुनिया के सारे मशागिल का हाल है, हम जिस जिस मशगले में लगे हुए हैं, इस रास्ते से इसकी कोशिश की जा रही है कि हम अपनी जिंदगी में अल्लाह के अहकामात को 100% लाने की मेहनत करें और अहकामात वाली जिंदगी को सीखें, और सीख कर एक माहौल में अल्लाह के रास्ते में निकलकर कुछ वक्त गुजारें, ताकि सीखने के साथ साथ अमली मश्क भी हो जाए और सीखना और अमल करना दोनों काबू में आ जाए। तो रहना तो इसी दुनिया में है, इसी दुनिया के धंधों में रहना है, छोड़ना नहीं है ये काम, तबलीग का दुनिया के कामों को छुड़ाने के लिए हरगिज नहीं है। फरमाया कि दुनिया के कामों में लगकर ही इस काम को करना मुजाहिदा बनेगा, अगर दुनिया के काम छोड़कर आदमी खाली दीन के काम का हो जाए तो उसके लिए तो बड़ी शराइत चाहिए और बड़ी बड़ी इस्तेदाद चाहिए, वो हमारे बस का नहीं। इसलिए हमें दुनिया के कामों को करते हुए हमें दीन के काम के लिए अपने आप में औकात को फारिग करना है और दुनिया के कामों को तरतीब देनी है, तरतीब के साथ दीन और दुनिया दोनों काबू में आ जाए। यही जिंदगी मिली है दुनिया बनाने के लिए भी और यही जिंदगी मिली है आखिरत बनाने के लिए। दुनिया बनाने के लिए ये जिंदगी हो, आखिरत के लिए कोई और जिंदगी हो, ऐसा नहीं है, बल्कि यही दुनिया की जिंदगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, बड़ी अच्छी दुआ, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला दीनी बिद्दुनिया, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला दीनी बिद्दुनिया, या अल्लाह मुझे दुनिया अता फरमाकर मेरे दीन पर मेरी मदद फरमा। हाँ, दुनिया को दुनिया के लिए नहीं लेना, दुनिया को ख्वाहिशात पूरा करने के लिए नहीं कमाना। जो दुनिया को दुनिया के लिए कमाएगा और ख्वाहिशात पूरा करने के लिए कमाएगा वो दुनिया में डूब जाएगा, दुनिया में फंस जाएगा, दुनिया का होकर रह जाएगा, उसको अपना भी होश नहीं रहेगा। फानसाहुम अनफुसाहुम, ये मंदर कायम हो जाएगा कि अल्लाह को बुलाया, अल्लाह के दीन को बुलाया तो अपनी जात से भी बेखबर हो जाएगा, उसको अपने नफे नुकसान का कोई होश नहीं रहेगा। इसलिए दुनिया की जिंदगी में फरमाया अल्लाहुम्मा आइन्नी अला दीनी बिद्दुनिया, या अल्लाह दुनिया अता फरमाकर मेरे दीन पर दीन के कामों में मेरी मदद फरमा। तो दुनिया को दीन के कामों के लिए मददगार बनाना है, मकसूद नहीं बनाना। दुनिया में इतना लगना है कि दीन के कामों के करने में आसानी पैदा हो जाए, किसी की मोहताजगी ना रहे, किसी के गैर की तरफ नजर ना उठे, किसी गैर के सामने हाथ ना फैले, किसी गैर की तरफ दिल माइल ना हो। इसलिए दुनिया में इतना लगना है और लगना इसलिए है कि आखिरत बनानी। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला दीनी बिद्दुनिया वाला आखिरती बिस्तक्वा, और मेरी आखिरत बनाने पर मेरी मदद फरमा दे तकवा अता फरमा। तकवा बहुत आसान है, बहुत आसान है। दो चीजों के जमा हो जाने का नाम तकवा है। हर मुसलमान कोशिश करे तो तकवे वाला बन सकता है। अल्लाह ने जिस अमर का हुक्म दिया है वो अमर ऐसा है कि वो मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, वो मुमकिन है और हमारी बसात में है और हमारी ताकत में है। तो फरमाया वाला आखिरती बिस्तक्वा, और आखिरत पर मेरी मदद फरमा दे तकवा अता फरमाकर। तकवा नाम है दो चीजों, करने के कामों को करना और न करने के कामों से बचना। अल्लाह ताला जल्ला जलालू वम्मा नवालू जो हाकिम आला है उन्होंने दो किस्म के हुक्म बंदों को दिए हैं। एक हुक्म वो है जिनका ताल्लुक करने से है, नमाज पढ़ना, रोजा रखना रोजे के दिनों में, हज करना हज के फर्जियत के बाद, जकात देना जकात की फर्जियत के साथ, इंसाफ करना, हुस्ने सलूक करना, रहम दिली करना, हर एक की खैरखाई करना, हर एक के नफे की सोचना, हर एक को फायदा पहुंचाने वाला बनना। फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास, सबसे बेहतर इंसान वो है जो इंसानों को नफा पहुंचाए। इंसान इंसान है, अल्लाह की अशरफुल मखलूकात है, कैसे बादशाह। हमारे हजरत फरमाया करते थे भूखा अगर किसी कौम का भी हो, किसी मजहब का भी हो, किसी बिरादरी का भी हो, अगर भूखा है तो हम उसकी हाजत पूरी करेंगे अगर हमारे अंदर वसत है। नंगा है तो हम उसके लिए कपड़ों का इंतजाम करेंगे। बीमार है तो हम उसके लिए दवाइयों और इलाज का इंतजाम करेंगे। ये नहीं देखेंगे ये किस कौम का है, किस बिरादरी का है, ये किस खानदान का है या किस मजहब का है। फरमाया खैर उन्नास मैन पर उन्नास, सारे इंसानों के लिए नफे बख्श बनना है। वो खरीदत लिन्नास, इस उम्मत के बारे में फरमाया गया कि ये उम्मत का वजूद ही सारे इंसानों को नफा रसानी के लिए किया गया। भाई जाग रहे हैं सो रहे हैं? खाना वाना खाया भाई, सो तो नहीं रहे, जरा सा दरुद शरीफ पढ़ लो, हरकत कर लो थोड़ी, आस पास में कोई सो रहा हो तो आराम से सुधरा दो। मुजाहिदे का वक्त है, इस मुजाहिदे पर हिदायत मिलती है। मैंने शुरू में एक आयत पढ़ी, उसका मफहूम यही है, आजकल वो मुजाहिद नहीं सहाबा वाले। सहाबा रजी अल्लाह अन्हु ने तो मुजाहिदे वो बर्दाश्त किए, गर्मी ऐसी बर्दाश्त की है तबूक के सफर में, फरमाते प्यास के मारे हमारी गर्दनें टूटने लगी, ऊंट जिबा पानी का पानी खत्म हो गया जो साथ में था, अब पानी नहीं है, प्यास शदीद है, गर्दनें टूट रही हैं प्यास के मारे, ऊंट जिबा कर करके उसकी ओजड़ी में से पानी निचोड़ निचोड़ कर हलक को तर्क किया गया, भूख का यह हाल के पत्ते चाप कर अल्लाह के रास्ते में सफर किए हैं, टिड्डियां खाकर सफर किए हैं, एक एक खजूर खाकर गुजारा किया है। तो वो मुजाहिदा तो हमारे बड़े करके चले गए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे और हमारी सबकी तरफ से उनको बेहद जजाय खैर अता फरमाए। अब तो बस थोड़ा सा मुजाहिद, थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर ली, थोड़ा खाना आगे पीछे हो गया, थोड़ा राहत तो आराम में कमी आ गई, घर का बिस्तर नहीं रहा, यहाँ चटाई पर और मैदान में मिट्टी पर जमीन पर लेट गए, ये मामूली मामूली मुजाहिदे, लेकिन इस दौर के अंदर ये मुजाहिदे ही हिदायत का जरिया है। तो आप जो गर्मी बर्दाश्त करके बैठ रहे हैं और नींद को काबू में कर रहे हैं, मुजाहिदा इंशाल्लाह हिदायत मिलेगी। तो मैं क्या कर रहा था कि दुनिया में हमको इंसानों की नफर आसानी के लिए भेजा गया है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के अहकाम दो किस्म के हैं, एक करने वाले और एक न करने वाले। करने वाले अहकाम को आदमी करने लगे, न करने वाले अहकाम से अपने आप को बचा ले तो ये मुत्तकी बन जाएगा, और मुत्तकी बन गया तो ऐसी अल्लाह के साथ अल्लाह की तरफ से मदद होगी कि इसके काम कोई अटकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। वमन ये तवक्कर अल्लाह फहसबु वमन यत्तकिल्लाह यजअल्लह मखरजा, कोई मुश्किल आएगी अल्लाह उसका रास्ता खोल देंगे, कोई परेशानी आएगी अल्लाह उससे निजात का रास्ता खोल देंगे। तो तकवा वाला बनने के लिए ये दीन की मेहनत अल्लाह ने हमको दी है, इस रास्ते में लगकर जिन्होंने सही उसूलों के साथ बुजुर्गों के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिन्होंने भी मेहनत की अल्लाह के फजल व करम से वो आलू तकवा बन गए, वो तकवे वाले बन गए। तो मेरे बुजुर्गों भाई और दोस्तों, करने के कामों को करना और न करने के कामों से बचना, न करने के कामों में झूठ है, सूद है, नमाजों में सुस्ती करना है, नमाजों को छोड़ना है, दीन के इल्म को न सीखना। दीन का इल्म खाली आलिमों के लिए नहीं है, आलिम तो अपनी जगह हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे और बाकी रखे और हमें उनसे नफा उठाने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन हर मुसलमान कसे बाशक उसके जिम्मे इतना इल्म सीखना जरूरी करार दिया गया है शरीयत में, जिससे अहकाम का इल्म जो उसके ऊपर फर्ज हैं उन अहकाम को अदा कर ले, जिन चीजों से बचना फर्ज है उनसे बचने वाला बन जाए, हराम हलाल की तमीज हो जाए, जायज नाजायज की पहचान हो जाए, करने के काम क्या है उनका पता चल जाए, न करने के काम क्या है उनका इल्म हो जाए। इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, और इल्म सीखने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि भाई एक मुद्दत है इसमें सीखा जाएगा, फरमाया कि इल्म सीखने के लिए मौत तक का वक्त अल्लाह ने दिया है, सीखते रहो अमल करते रहो। तो इसलिए इल्म लेते हुए उलमा से पूछते हुए अपनी जिंदगी को गुजारना है, तकवे वाली जिंदगी गुजारने के लिए इल्म और उलमा से पूछ पूछ कर चलना ये जरूरी है। अहकामात वाली जिंदगी पर आने के लिए उलमा से पूछ पूछ कर चलना जरूरी है। दीन को अल्लाह जल्ला जलालुहु ने आसान बनाया और आसान इस वजह से है कि हम अगर पूछ पूछ कर चले तो दीन आसान है, और अपनी मर्जी से और अपनी ख्वाहिश से चले तो दीन मुश्किल मालूम होगा। हाजियों को खूब देखा, जो हज सीख कर गए उन्हें हमने परेशान होते नहीं देखा, वो सारे काम आराम से कर रहे हैं और खूब अमल में अपने आप को लगा रहे हैं। और जो हाजी हज सीख कर नहीं गए, बस शौक में देखा देखी, पैसा आ गया, पासपोर्ट आ गया और घर में चले गए, सीखा कुछ नहीं, उनको वहां देखा, झगड़ते देखा, परेशान होते देखा, हैरान होते देखा। इसलिए दीन आसान कब होगा? जब हम उलमा से पूछ पूछ कर चले। दीन आसान कब होगा? जब हम इल्म हासिल कर कर उसके मुताबिक चलेंगे। हम कुछ न करें और दीन आसान हो जाए, ऐसा आसान नहीं। आसान का मतलब यह है कि करना चाहें, पूछ पूछ कर चलना चाहें तो चल सकते हैं और काम बन सकता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गो भाई और दोस्तों, तकवे वाली जिंदगी पर आने के लिए मेहनत है, ये सिर्फ खाली नहीं है, ये मेहनत इसलिए है कि हम तकवे वाले बने, हम एहसान वाले बने, हम अल्लाह के बंदे बने। 24 घंटे बंदगी वाली जिंदगी हमारी बन जाए और 24 घंटे बंदगी के साथ हम गिने। खाना बंदगी के तरीके पर हो, कमाना बंदगी के तरीके पर हो, खर्च करना बंदगी के तरीके पर हो, सोना जागना बंदगी के तरीके पर हो, ये सारे आमाल जो दुनियावी आमाल कहलाते हैं, जिनको आदतन हम करते हैं, ये सारे इबादात में मुंतकिल हो जाते हैं, सब बाइस से अजर व सवाब बन जाते हैं। अगर सोना सुन्नत के मुताबिक हो जाए, हत्ता के मामूली अमल बैतुल खला आना जाना अगर ये सुन्नत के मुताबिक हो जाए तो ये बाइस से अजर हो जाता है। तो दीन आसान है, कब आसान है? जब इसको सीख लिया जाए, पूछते रहा जाए और पूछ पूछ कर अपनी जिंदगी को चलाया जाए तो आसान है। और अल्लाह जल्ला जलालहू ने जितने भी दुनिया और आखिरत की जिंदगी में कामयाबी के वादे किए हैं वो दीन पर किए हैं। आज तक की तारीख, कुरान और हदीस और सीरत पाक इसकी गवाह है कि दीन वाले हर जमाने में चमके हैं, ईमान वाले हर जमाने में चमके हैं। और जिन्होंने ईमान और दीन वाली जिंदगी इख्तियार नहीं की वो हर जमाने में नाकाम हुए हैं। बादशाह होकर नाकाम हुए हैं, वजीर होकर नाकाम हुए हैं, वो अक्सरियत में होकर नाकाम हुए हैं, वो बड़ी बड़ी सनअतों और हिफतों के मालिक बनकर नाकाम हुए, बड़ी बड़ी तिजारत की मंडियों के मालिक होकर नाकाम हुए, बड़े बड़े बागात, ऐसे बागात के जिनका तसव्वुर आज नहीं किया, फले हुए लदे हुए फलों से, ऐसे लदे फले बागों के होते हुए नाकाम हुए हैं। कब? जब ईमान और दीन वाली जिंदगी उनके पास नहीं थी। और उसके बरक्स पूरी तारीख शाहिद है, कुरान और हदीस शाहिद है, सीरत पाक शाहिद है कि दीन वाले हर जमाने में कामयाब हुए हैं। थोड़े थे तो कामयाब हुए, ज्यादा थे तो कामयाब थे, गुरबत में थे कामयाब हुए हो, मालदारी में थे कामयाब हुए, जिस हाल में थे कामयाब हुए, इसलिए कि जाब्ता पूरा कर दिया कामयाबी का, जहां रहेंगे वहीं अल्लाह कामयाब कर देगा। इसलिए दुनिया के मामले में हमें ये तालीम दी गई कि हम कनात वाली जिंदगी इख्तियार करें, ऊपर वालों को न देखें, हम अपने से नीचे वालों को दुनिया के मामले में देखें ताकि कनात वाली सिफत पैदा हो जाए। कनात वाली सिफत पैदा होने पर थोड़ी दुनिया में ही अल्लाह हमारे काम बना देंगे, और कनात वाली सिफत पैदा नहीं हुई तो कमाते कमाते थक जाएंगे और कमाने की भूख खत्म नहीं होगी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों भाई और दोस्तों, दीन को आसान अल्लाह ने बनाया है, इसको सीखने, इस पर अमल करने, उसकी मशक करने के लिए अल्लाह ने हमें ये मुबारक मेहनत और काम दे दिया है। इसलिए हम अपने आप को एक निजाम बनाकर, ये काम जलसे में शिरकत का खाली नहीं है और ये काम तीन रोज लगाने का खाली नहीं है, ये काम चिल्ला और चार महीने लगाने का भी नहीं है, ये काम तो मौत तक करने का है। जब तक सांस में सांस है काम करना है, जब तक हयात है काम करना है, जीते जीते करना है और करते करते जीना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम अगर तरतीब बना लें तो तरतीब से दुनिया के काम भी हो जाएंगे और आखिरत के काम भी हो जाएंगे। और तरतीब नहीं बनाई, वक्त को ऐसे ही आजाद छोड़ दिया तो ये दुनिया ऐसी कमीनी है कि हमारा सारा वक्त खा जाएगी, हमारे सारी सलाहियत चूस लेगी, हमारी पूरी ताकत को चूस लेगी और हमें बेयार और मददगार आखिर में आकर छोड़ दे, और उस वक्त धोखा खुलेगा और उस वक्त का धोखा खुलना कोई फायदा नहीं देगा। इसलिए दुनिया के धोखे से अपने आप को बचाना है। ये दुनिया की जिंदगी आरजी जिंदगी है, फना होने वाली जिंदगी है, इसलिए दी गई है कि हम अपनी आखिरत को बनाएं, अपनी आखिरत के बनाने का सामान करें, ये फना वाली चीजों से बाकी रहने वाली चीजों को बनाने की एक जगह है जहां समझदार आदमी है जो यहां फानी होने वाली चीजों से बाकी रहने वाली चीजों को अपने बना ले। इसलिए हर शख्स को इसके लिए तैयार करना है, हर एक को समझाना है कि देखो दुनिया की जिंदगी आर्मी जिंदगी है, ये अमल की दुनिया है, यहाँ अमल है, यहाँ इम्तिहान की जगह है, इम्तिहान में चल रहे हैं कि कौन अल्लाह को सामने रखकर, अल्लाह के रसूल की तालीमात को सामने रखकर, अल्लाह के अहकाम को सामने रखकर कौन जिंदगी गुजार रहा है और कौन उनसे रू गर्दानी करके जिंदगी गुजार रहा है, इस इम्तिहान में सब चल रहे हैं। इसलिए इम्तिहान की जगह भी है और अमल की जगह भी यही है, अमल करने के लिए दूसरी कोई जगह नहीं है, यहीं पर सारी उम्र हमें अमल करते 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 जीना है। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, बंदगी में लगे रहिए यहाँ तक के मौत या अल्लाह की तरफ से बुलावे का वक्त आ जाए। तो दो चार दिन चिल्ले दो चिल्ले का काम नहीं है, ये मेरे मोहतरम बुजुर्गों भाई और दोस्तों पूरी जिंदगी को दीन पर लाने की एक मेहनत है और कामयाबी के रास्ते पर डालने की एक मेहनत है। जैसा मैंने अर्ज किया, दुनिया की कामयाबी हो या आखिरत की कामयाबी हो, आखिरत में तो हर शख्स देख लेगा, आखिरत में तो हर शख्स खुली आंखों देख लेगा कि सिर्फ ईमान वाले और दीन वाले कामयाब होंगे। एक सहाबी अल्लाह के रास्ते में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज के मौके पर मुलाकात हुई। बरसों पहले वो मीना के मैदान में हुजूर से मिले थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत की बात लेकर उनके काफले के पास गए थे। काफले वालों को आपने दावत दी थी, तो ये आदमी, इसने काफले वालों को समझाया कि देखो ये जो आदमी है इनकी बात पक्की ठक्की मालूम हो रही है, इनकी बात मान लो। आपने एक अल्लाह की वादानियत की तरफ दावत दी और अपनी रिसालत की दावत। तो ये जो सहाबी हैं, इन्होंने समझाया पूरी कौम को, कबीले के लोगों को, कि देखो ये आदमी सच्चा मालूम होता है, इसकी बात को मान लो, इसकी बात के मानने में फायदा है। तो कौम ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, पहले अपने सरदारों से पूछेंगे, अब तो हज करने आए हैं, हज करके वापस जाएंगे, अपने सरदारों से पूछेंगे। क्योंकि अरब में कबाइली निजाम था, जो सरदार हुआ करता था उसकी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं किया करते। तो ये कहकर वो उन्होंने बात को टाल दिया। टालने के बाद इस आदमी के अंदर एक फिक्र थी कि ये बात सच्ची है, मान ले तो अच्छा है। तो इनने एक बात कही कि देखो हम घर तो चल ही रहे हैं, तो घर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता फदक होकर जाता है, तो फदक वाले रास्ते से चलते हैं, यहाँ पर यहूदी रहते हैं जो अहले किताब हैं, और उनकी किताबों में, उनकी किताब में आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये दावा कर रहे हैं नबूवत का और ऐलान कर रहे हैं, इनका तज़किरा उनकी किताब में मौजूद है, हम चलते हैं उनसे पूछेंगे। तो ये राजी कर लिया पूरे काफिले को और वो रास्ता इख्तियार किया, वहां पहुंच गए यहूद की बस्ती में और उनके सामने ये बात रखी कि ऐसा ऐसा मामला हमारे साथ हुआ। तो वो अपनी किताबें लेकर आए, किताबें खोली और किताबें खोलकर आपकी अलामत उसमें से बयान की। मामूली सवारी पर आएंगे, गधे की खच्चर की सवारी पर, थोड़ी रोटी पर टुकड़े पर गुजारा कर लेंगे, आपका फद मुबारक यानी आपका सरापा उसने किताब में देख के बयान किया कि आपका फद मुबारक ना बहुत लंबा होगा ना बहुत छोटा होगा, आंखों में सुर्ख सुर्ख डोरे होंगे, बाल न बहुत घुंघराले होंगे और न बहुत सीधे होंगे। इस तरह बहुत सी अलामात जो तौरेत में थी और सही अलामात थी वो उसने उनके सामने बयान किया और कहा अगर वो ऐसे है तो मेरा मशवरा यह है कि उनकी बात मान लो और कलमा पढ़ लो, लेकिन हम कबूल नहीं करेंगे हसद की वजह से। यहूदी ने कहा कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे, नबी बरहक हैं, मेरा मशवरा यह है कि तुम लोग उनकी बात मान लो, फायदे में रहो। तो अब ये सहाबी जो यहाँ लेकर आए थे इन्होंने फिर कौम से कहा देखो अब तो बात खुलकर सामने आ गई, इसलिए अब कोई शक वाली बात भी नहीं रही, चलो और चल के अपने कलमा पढ़ लो और ईमान में दाखिल हो जाओ। लेकिन इन्होंने फिर ये कहा कि ठीक है बात तो वाजे हो गई, लेकिन अभी तो हम चलते हैं और अगले साल जब हज में आएंगे तो फिर आपके हाथ पर ईमान लेकर आएंगे। चुनाचे वापस चले गए। जाने के बाद बरसों गुजर गए और एक एक करके जितने काफले वाले थे सब दुनिया से रुखसत हो गए, सब मरकर दुनिया से चले गए। और एक अरसे के बाद वो साहब जिन्होंने इन सबको मशवरा दिया था, वो साहबी मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, वो हज में आए और हज में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। मुलाकात होने पर इन्होंने अर्ज किया कि आपने मुझे पहचाना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैंने पहचाना, तुम फला आदमी हो, वहां मुलाकात हुई थी, आपने उसको बताया कि हाँ मैं वही हूँ। ए अल्लाह के रसूल बात तो मेरी उसी दिन समझ में आ गई थी, आपकी बात हक है, मैं उसी दिन मेरे दिल में उतर गई थी, लेकिन कौम के साथ की वजह से मैं उस वक्त अमल नहीं कर सका। बहरहाल अल्लाह की तरफ से जो होना था वो हो गया, काफी देर हो गई इस काम में, अब मैं हाजिर हुआ हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए और मैं ईमान लाने के लिए आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चुनाचे ईमान ले आए, कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पढ़ने के बाद अब इन्होंने सवाल किया जो काबिले गौर है, इन्होंने सवाल किया कौम के वो लोग जो मरकर चले गए और उस काफिले में थे उनके बारे में सवाल किया। ये हमदर्दी की बात है, इंसानी हमदर्दी इनके दिल में थी, जिंदगी में भी उनको समझाया, खूब समझाया, अब मौत के बाद भी उनके खैरखाई में एक सवाल किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल वो सारे के सारे तो दुनिया से चले गए, मरकर खत्म हो गए, अब वो कहाँ जाएंगे, उनका ठिकाना क्या होगा? तो आपने इरशाद फरमाया जो दीन इस्लाम के अलावा किसी भी दीन पर मरा है उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका ठिकाना जहन्नम। और एक मौके पर आपने कसम खा के फरमाया कि मरने के बाद या तो जन्नत ठिकाना होगी या जहन्नम में ठिकाना होगा, इन दो के अलावा कोई ठिकाने नहीं होंगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गो भाई और दोस्तों, आखिरत का मामला वो तो अपनी जगह है ही अहम, लेकिन दुनिया के मामलात में भी, दुनिया की जिंदगी में भी अगर सुकून मिलेगा तो दीन के रास्ते से, ईमान के रास्ते से, ईमानी सिफात के रास्ते से, ईमानी आमाल के रास्ते से, ये जिक्र इलाही के रास्ते से, इल्म इलाही के रास्ते से और हुस्न खुलुक के रास्ते से, इखलास नियत के रास्ते से, दुनिया में भी जो सुकून और इत्मीनान और कामयाबी मिलेगी वो इसी रास्ते से मिलेगी। इसलिए हम धोखे में ना आए दुनिया की चमक दमक के, और ये न सोचे कि हमें इस दुनिया में बस यही से इसी से कुछ काम हो जाने वाला है। दुनिया से आज तक किसी का काम नहीं बना है, ये इम्तिहान की जगह है, धोखे का घर है, इसके धोखे से बचना जरूरी है। फरमाया समझदार वो है जो यहाँ दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी कर ले, मौत और मौत के बाद आने वाली जिंदगी की तैयारी कर ले। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, हमें खुद भी इस बात को समझना है और इस पर आना है और इस पर जमना है और मौत तक काम को करने की नियत इरादे करने हैं और जहां जहां हम रहते हैं अपनी बस्तियों में, अपनी मस्जिदों के अतराफ में, अपने अजला में, अपनी आबादियों में, हमें हर मुसलमान को ये बात समझानी है कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं। हम दुनिया में बंदगी करने और बंदगी की जिंदगी दुनिया में कायम करने के लिए हमें पैदा किया गया है कि हम दुनिया में चल फिर कर अल्लाह की बंदगी की दावत दें और लोगों को खैर के रास्ते की तरफ बुलाएं, इसलिए कि अल्लाह के अलावा किसी के हाथ में किसी की जिंदगी बनाना नहीं, किसी के हाथ में किसी को कामयाब करना नहीं है। वो दुनिया में भी हाकिम आला है, उनके हुक्म से ही सब कुछ होगा, और आखिरत में भी हाकिम आला है, उनके हुक्म से ही सब कुछ होगा। इसीलिए फातिहा में, सूरह फातिहा में मालिक यौमिद्दीन, फैसले के दिन का मालिक, हाकिम आला, ये आखिरत के लिए। लेकिन हमारे हजरत फरमाते थे कि फैसले के दिन का मालिक जो उस दिन है, वो आज भी इस दुनिया में वही मालिक, उसके फैसलों से सब कुछ हो रहा है। बारिशें उसके फैसले से हो रही हैं, कहर साली उसके फैसले से आ रही है, मुल्कों के निजाम उसके फैसले से चल रहे हैं, किसी को ऊपर ला रहे हैं, किसी को नीचे ले जा रहे हैं, दुनिया की तिजारतों का निजाम उसके फैसलों से चल रहा है। कभी नफे की शक्लें आ रही हैं, कभी नुकसान की शक्लें आ रही हैं, खेतियों का निजाम उसके हुक्म से चल रहा है। दुनिया में कोई एक जर्रा बराबर भी कोई चीज अगर वजूद में आ रही है, वो उसके हुक्म से आ रही है। तो जो इतना बड़ा हाकिम आला है, उसका ना बनना, उसकी बंदगी में ना आना, कितने बड़े खसारे और नुकसान की बात है। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा हमसे तकाजा करता है कि हम अपनी जिंदगी कलमे के मुताबिक बनाएं और लोगों को इसकी दावत दें, दावत दें कि कलमे के मुताबिक जिंदगी बना लो। दुनिया, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है। अब दुनिया खुले कतलकुम वइन्नकुम खुलिक्तुम लिलआखिरा, ये दुनिया सारी तुम्हारे इस्तेमाल के लिए बनी है, हदूद में रहकर इसको इस्तेमाल करना है, जाहिर हदूद में रहकर इससे फायदा उठाना है, और फायदा उठाते हुए अपनी आखिरत वाले आमाल को बनाने के लिए इसको इस्तेमाल में लाना है। कुव्वत जिस्मानी इसलिए हासिल करनी है कि बंदगी और दीन की मेहनत में कुव्वत हासिल रहे। इस तरह दुनिया की हर चीज से दीनी नफा हासिल करने की फिक्र करनी है। दुनिया को दुनिया के लिए नहीं कमाना, दुनिया को भी आखिरत की नजरिए से ही कमाना। दुनिया में दुनिया की नियत से नहीं लगना, दुनिया में भी आखिरत बनाने की नियत से लगना है। कमाई में इसलिए लगना है कि अल्लाह का हुक्म है, कलमे नमाज के बाद हलाल कमाई कमाना ये फर्ज है, इसलिए कमाई में लग रहा। और हदूद मुकर्रर करें, कमाइयों के औकात मुकर्रर करें, और दीन की मेहनत के औकात मुकर्रर करें, अपनी 24 घंटे की जिंदगी में इबादत का वक्त भी मुकर्रर करें, नमाजों के औकात भी मुकर्रर करें, तिलावत का वक्त भी मुकर्रर करें, जिक्र और अज़कार का वक्त भी मुकर्रर करें, कोई वक्त अल्लाह तौफीक दे दुआ मांगने का मुकर्रर करें, उस वक्त में अल्लाह से अपनी दुनिया और आखिरत की दुआ के लिए दुआएं मांगी जाएं, तो ये सारे आमाल औकात की तरतीब देने पर काबू में आ जाएं। दीन की मेहनत के लिए कोई वक्त मुकर्रर हो, जिंदगी बगैर दीन की मेहनत के, बगैर अहकाम की पाबंदी के जिंदगी नहीं है, वो शर्मिंदगी है। जिंदगी वो है जो बंदगी वाली हो, जिंदगी वो है जो अहकाम के पूरा करने में लगी हुई हो, वरना सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं हासिल होने वाला। ऐसी शर्मिंदगी होगी कि नजरें और गर्दन झुकी हुई होगी और चेहरे पर स्याही छाई हुई होगी और कोई पुरसान हाल नहीं होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे बुजुर्गों, भाई और दोस्तों, खुद भी इस काम में लगना है, समझना है, लोगों को भी लगाना है और समझाना है, और ये नियत करनी है कि मौत तक ये काम करना है। ये इस्तेमाल में बुलाना जहन साजी के लिए है, ये बात समझने समझाने के लिए।